কৃপাবলোকন করো, আমি বড় দুঃখী। কৃপা কৃপাবলোকন করো, আমি বড় দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাই, তব কৃপা বলে পাই চৈতন্য নিতাই, সনাতন রূপ রাঘুনাথ, বট যোগ শ্রী জীবা প্রভু লোকনাথ, দয়া কর শ্রীয়াচার্য প্রভু শ্রীনিবাস, দয়া কর রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস, দয়া কর মোরে
জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, জয় রাধা জয় রাধা মাধব কুঞ্জ যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যশোদানন্দন यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारिया यमुना तीरावन चारिया यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Rama, Rama Rama. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा पंड गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा परिधाम की जय द्वारका परिधाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ परिधाम की जय श्री श्री राधा राधिकरण भगवान की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री गलताय भगवान की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू गोविंदराम ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद हरे कृष्ण सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत में और नया अध्याय शुरू हुआ है सातवें स्कंद में तीसरे अध्याय का पहला श्लोक हम ले रहे हैं अध्याय का नाम है हमारे अमर बनने की योजना हिरण्यकश्यप की अमर बनने की योजना फर्क नहीं है श्रीनारद उवाच हिरण्यकशिपु राजन् अजयम् अजर अमरम् आत्मनम् अप्रतिद्वंद्वम् एकराजम् व्याधिस्तः श्रीनारद उवाच हिरण्यकशिपुराजन् जयं जरामरं आत्मनं प्रतिद्वंद्वं एकराजं व्याधिस्तः श्रीनारद उवाच हिरण्यकशिपुराजन् जयं जरामरं आत्मनं प्रतिद्वंद्वं एकराजं व्याधिस्तः श्रीनारद उवाच हिरण्यकशिपुराजन् जयं जरामरं आत्मनं प्रतिद्वंद्वं एकराजं व्याधिस्तः जयं जरामरं आत्मनं प्रति द्वंद्वं नारद उवाच। नारद मुनि जी ने कहा, हिरण्यकशिपु दैतराज हिरण्यकशिपु राजन, हे राजा युधिष्ठिर, अजेयम किसी शत्रु द्वारा ना जीता जा सकने योग्य, अजर जरा या व्याधि से रहित, अमरम अमर, आत्मनं स्वयं, अप्रतिद्वंद्वं किसी प्रतिद्वंदी या विरोधी से विहीन, एक राजन ब्रह्मांड का एक छत्र राजा चक्रवर्ती व्याधिस्ता बनना चाहता था। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, दैत्यराज हिरण्यकशिपु अजय तथा वृद्धावस्था एवं शरीर की जर्जरता से मुक्त होना चाहता था। वह अणिमा तथा लघिमा जैसी समस्त योग सिद्धियों को प्राप्त करना, मृत्यु रहित होना और ब्रह्मलोक समेत अखिल विश्व का एक छत्र राजा बनना चाहता था। तात्पर्य, असुरों द्वारा संपन्न तपस्या के लक्ष्य ऐसे ही होते हैं। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से ऐसे वरदान प्राप्त करना चाहता था जिससे वह भविष्य में ब्रह्मा जी के धाम को जीतने में समर्थ हो सके। इसी प्रकार एक अन्य दैत्य ने शिव जी से वर प्राप्त किया, किंतु बाद में वह उसी वर से शिव जी को मारना चाहता था। इस तरह स्वार्थी व्यक्ति आसुरी तपस्या द्वारा अपने ही उपकारी को मारना चाहता है, जबकि वैष्णव भगवान का नित्य दास बना रहना चाहता है और भगवान के पद को प्राप्त करना नहीं चाहता। सायुज्य भक्ति के द्वारा किसी जिसकी कामना असुरगण करते हैं, कोई भले ही भगवान के अस्तित्व में तदाकार हो जाए या कभी कभी कोई अद्वैतवाद का लक्ष्य भले ही प्राप्त कर ले, किंतु उसे पुनः इस संसार में संघर्ष करने के लिए नीचे गिरना पड़ता है। ओम अज्ञान्ति निरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणलिता श्रीविशाखान्वितंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे
हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा। तो सभी भक्तों का एक बार फिर से श्रीमद् भागवतम कथा में स्वागत करते हैं। अध्याय जो है नया शुरू हुआ है जिसका नाम है अमर बनने की हिरण्यकश्यपु की योजना या हमारी अमर बनने की योजना। तो अनुवाद और तात्पर्य दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रभुपाद जी बड़े सुंदर ढंग से तात्पर्य में हिरण्यकश्यपु के द्वारा जो वो चाहता था, क्योंकि इससे पहले के अध्याय में हमने पढ़ा कि हिरण्यकश्यपु ज्ञान का व्याख्यान कर रहा है अपने परिवारजनों को, अपने भाई हिरण्याक्ष के मरने पर उनको कंसोल कर रहे हैं कि जो ये शरीर है ये जर्जर है, शरीर जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा लेकिन आत्मा अमर रहता है। और ये ज्ञान देने के बाद तुरंत अब वो उसी शरीर को अमर बनाना चाहता है। तो ये ठीक उसी प्रकार है कि जब ज्यादातर लोग व्याख्यान करना पसंद करते हैं लेकिन जब उसके आचरण की बारी आती है तो उसमें जो है लोगों को मुश्किलात महसूस होती हैं। और जैसे एक बार एक प्रवचनकर्ता भी प्रवचन दे रहे थे और अपने प्रवचन में कहते हैं कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब अपने घर आते हैं तो अपनी धर्मपत्नी को बोलते हैं जल्दी से मछली बना दो। तो उनकी वाइफ कहती है आज ही तो आप लेक्चर में बोल रहे थे ये सब नहीं खाना चाहिए। वो कहते हैं ये दूसरों के लिए था आपको तो पता है मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो कहने का मतलब क्या है कि समाज में क्योंकि कलयुग का समय चल रहा है तो ऐसे में धार्मिक सिद्धांत का धीरे धीरे हनन होता जाएगा। श्रीमद् ग्रंथ में ही बताया गया है कि कलयुग में मांसाहारी या नशा करने वाले या वैध संबंध करने वाले या जुआ इत्यादि करने वाले इस तरह के लोगों को देखकर मतलब बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि स्वाभाविक वृत्ति बन जाएगी और उनको इस चीज़ के लिए उनकी निंदा करना ऐसा करना मना कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये भी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहेगा, वो व्यक्ति हमेशा दुखी परेशान और इतने जरा इस तरह के घृणित कार्य कर वो काफ़ी समय तक लंबे समय तक नरकों में रहेगा या इस भौतिक जगत में सड़ता रहेगा। कब तक? जब तक कि वो साधुओं की शरण में ना जाए या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शुरू ना करे तब तक उसको इस भौतिक जगत में सड़ना पड़े। तो श्रीमान हिरण्यकश्यपु सुंदर प्रवचन करने के बाद अब उनकी जो इच्छा है वो क्या है कि मैं अमर हो जाऊं। वास्तव में ये अमरत्व हर व्यक्ति चाहता है। जब समुद्र मंथन से हम जानते हैं कि काफ़ी विष निकलने के बाद या अन्य चीज़ें निकलने के बाद जब वो मटका निकला जिसमें कि अमृत था तो दोनों पार्टीज देवता भी और असुरगण भी सब उस अमृत को लेना चाहते थे। तो भगवान को स्वयं बीच में आना पड़ा मोहिनी अवतार लेकर क्योंकि वो असुरों के हाथ में आ गया था। और अगर असुर अमर हो गए तो पहले ही वो देवताओं पर हमेशा हावी रहते थे। जब कभी कोई युद्ध हो, जब कोई घटना लड़ाई झगड़ा हो तो देवताओं के ऊपर हमेशा हावी होते थे। देवता बेचारे भगवान की योजनाओं के अनुसार या उनकी सेवाओं के अनुसार संसार को मेंटेन करने की कोशिश करते थे लेकिन आए दिन असुरी प्रवृत्ति जो है उनके ऊपर हावी हो जाती थी। क्योंकि असुर लोग इन्हीं विधि विधानों का तपस्या इत्यादि करके किसी न किसी देवता को प्रसन्न कर कुछ न कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे और बाद में उन्हीं देवताओं के पीछे पड़ जाते थे। रूपराज जी बता रहे हैं कि शिव जी का भी एक ऐसा भक्त हुआ था जिसने जो है खूब खतरनाक तपस्या करी और बाद में शिव जी को ही रास्ते से हटाने का प्रयास किया। इस भौतिक जगत में भी ऐसा ही होता है कि जब लोग किसी प्रकार का पद या नेता बनते हैं या किसी से आगे जाते हैं तो सबसे पहले वो अपने सामने वाले चाहे वो उसके गुरुजन हों चाहे वो उसके पथ प्रदर्शक हों तो तो सबसे पहले उनको सफाया करना चाहता है, रास्ता क्लियर करना चाहता है कि भैया जब तक ये रहेगा सामने तब तक मुझे नहीं मिलेगा कुछ भी। आए दिन न्यूज़पेपर में कुछ लोग बताते हैं कि माता पिता भी लोगों को कई बार अपनी इंद्रिय तृप्ति में बहुत बड़ी बाधा लगते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बचपन से इंद्रिय तृप्ति करता करता बच्चा बड़ा हुआ है, जब उस बच्चे की इंद्रियां पूरी वेगवान है और उनको तृप्त करना चाहता है तो माता पिता या बड़े लोगों के द्वारा जब उसको रोकने का प्रयास किया जाता है या उसकी इंद्रिय तृप्ति के संसाधनों को नहीं दिया जाता उसको, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत उग्र बन जाता है और ऐसी ऐसी प्लानिंग करता है। हमें किसी ने बताया कि अभी कुछ ऐसी घटना घटी जिसमें एक व्यक्ति बहुत धनी था, अपार धन था, लेकिन जो पुत्र है उस पर इतना विश्वास नहीं था। तो पुत्र ने क्या किया, एक कलयुगी साधु की शरण ग्रहण करी, उसने उनका मार्गदर्शन किया, उसने साधु को ये ऑफर किया, भैया अगर आप ऐसे ऐसे मेरी इंद्र तृप्ति के और मेरे धन के बीच में आने वाले ये मेरे जो पिता हैं, इनको ही भगवान के धाम भेज दो जल्दी से, तो मैं जो है आपको इतना धन दूंगा। तो साधु जी को लगा बहुत अच्छी मोटी रकम मिल रही है, तो क्यों ना हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने को भी लगा भी मैं खुद तो कर नहीं सकता, तो उन्होंने जो है, अब यमराज के दूध तो मिलते नहीं किराए पे, तो इसी कलयुग में ऐसे कुछ खतरनाक लोगों को लिया और कहा भाई ऐसा ऐसा काम करना है। अच्छा, उनकी राशि जो है बहुत कम थी जो उनको देनी थी, तो जितना उसको मिल रहा था उसकी राशि उनको देने में कम थी, तो उन्होंने जिनको दी उन्होंने भी दो चार लोग मिलाए और आगे जो है और कम हो गई राशि, और फिर बाद में जाके उस धनी व्यक्ति का जो है बहुत ही योजना बनाकर वध कर दिया गया। और जब वध हुआ तो फिर धीरे धीरे हमारे देश की पुलिस तो आपको पता ही है अच्छे ढंग से आज के काम करती है, तो पकड़ लिया गया और फिर पता चला कि पिता की हत्या के पीछे पुत्र ही थे, और पुत्र ने बताया कि हमने ये इसलिए किया क्योंकि मेरी जो इच्छाएं थी, मेरी जो इंद्रिय तृप्ति की भावना थी, उसमें मेरे पिता ही बाधक बन रहे थे। इसलिए कई बार कोई सज्जन पुरुष भी होते हैं, अच्छे मार्ग पर भी चल रहे होते हैं, और जो गलत मार्ग पर चल रहे होते हैं, जब उनको रोका जाता है तो हम देखते हैं कि ऐसे सज्जन पुरुषों के भी कितने सारे शत्रु खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति का इतना खतरनाक वेग है, इस मटेरियलिज्म का इतना आकर्षण है, माया का इतना प्रभाव है कि व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं सोचता कि एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कितना कितनी मात्रा में या कितने प्रकार के साधनों की जरूरत है। और जब उसको नहीं पता होता कि जीवन जीने के लिए कितनी चीज की आवश्यकता है, तो वह अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। महाभारत में इसलिए बताया गया एक जगह कि इस संसार के किसी व्यक्ति को जिसकी इंद्रियां उसके काबू में नहीं है, इस संसार की अगर उसको भोगने के लिए सारी स्त्रियां प्रदान कर दी जाएं, तो भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। सारा धन या गोल्ड दे दिया जाए तो भी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए कई बार ऐसे लोग स्वर्ग में या इत्यादि में जगह पे जाना चाहते हैं और वहां के लोग वहां का भी भोग करना चाहते हैं। तो हमारे इस वातावरण में, आधुनिक वातावरण में शिक्षा या जो एसोसिएशन है लोगों का या जहां से वो सब कुछ सीखते हैं, जब तक उस शिक्षा का आधार मन को नियंत्रित करना नहीं होगा, इच्छाओं को नियंत्रित करना नहीं होगा, तब तक आप भूल जाइए कि इस समाज में, इस देश में कोई व्यक्ति सुखी रह सकता है या आसानी से जीवन जी सकता, नहीं हो सकता। समाज तो बहुत बड़ी बात हो गई, देश तो और भी ज्यादा बड़ी बात हो गई, विश्व तो उससे भी बड़ी बात हो गई। अगर कोई व्यक्ति अपने को प्राप्त ये शरीर, मन और बुद्धि का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं कर रहा, तो व्यक्ति हर समय दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि उसका मन उसके काबू में नहीं है। और ये मन बार बार विचलित रहता है नाना प्रकार की इच्छाओं से, और इसलिए ऐसा व्यक्ति हर समय दुखी और परेशान और हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो जब एक संसार अर्थात ये जो शरीर है ये भी एक संसार के समान है, एक व्यक्ति का ना कितना कुछ है इसके अंदर, एक व्यक्ति खुद परेशान है, दुखी है, डिप्रेशन में है, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका मन उसके काबू में नहीं, उससे मन में नाना प्रकार की इच्छाएं डेवलप हो रही हैं, और फिर उस भोग की इच्छाओं को, भोग की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक योजनाएं बनाता है, उन योजनाओं से आसक्त हो जाता है, और उस योजना में या उसकी इच्छाओं में जब कोई बाधा डालता है तो दुखी होता है, परेशान होता है, गुस्सा आता है, और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है या फिर उस बाधा पहुंचाने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। तो एक आदमी की बात हो रही है, ऐसा एक आदमी, इसी तरह दूसरा आदमी एक परिवार के अंदर, इसी तरह घर में 5 या 10 जो भी लोग रहते हैं, ये सभी लोग इस प्रकार डिस्टर्ब है। और एक परिवार से फिर समाज बनता है, और समाज से फिर देश बनता है, और देश से पूरा संसार बनता है। तो ये पूरा संसार भरा हुआ है ऐसे लोगों से जो अपनी मन के द्वारा उत्पन्न होने वाली अनियंत्रित इच्छाओं को रोक नहीं पा रहा, और इच्छाएं आ रही हैं तो योजनाएं बना रहा है, और इतनी योजनाओं को पूरा करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए वो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक भाग रहा है। कुता सुख, ऐसे व्यक्ति को सुख कैसे मिलेगा? ऐसा व्यक्ति ना शांत रह सकता है, ना सुखी रह सकता है, हाँ डिस्टर्ब रह सकता है, परेशान रह सकता है, और हमेशा क्रोधित रह सकता है। हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र ये साफ साफ ये शिक्षाएं दे रहे हैं, और हमारी शिक्षा पद्धति हो, हमारा आपस का समाज कल्चर हो, कहीं पर भी किसी लोगों को आपने आपस में बात करते देखा कि हमको अपनी इंद्रियों पे कैसे काबू करना है, इच्छाओं पे कैसे काबू करना है, कोई ये टॉपिक है कभी किसी की बातचीत करने का? कोई टेलीविजन चैनल या कोई न्यूज़पेपर आपको कहीं पर ऐसे सुंदर सुंदर तरीके बता रहा है कि मन को कैसे काबू करना है? किसी स्कूल में कोई ऐसा सिलेबस है कि मन को कैसे कंट्रोल करते हैं? तो सोचिए, जिस चीज का प्रयास ही नहीं किया जा रहा, जिस बात चीज के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि समाज या देश किस दृष्टि में, किस किस मार्ग पर जा रहे हैं। और ऐसे लोगों के बीच में रहना जो हर समय दुखी है, परेशान और डिस्टर्ब है अनियंत्रित इच्छाओं के साथ, तो कुछ अच्छे लोग भी अगर ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे तो दुखी और परेशान रहेंगे। कारण दूसरे लोग उनको आदि भौतिक कलेश के रूप में नाना प्रकार के कलह और कलेश देंगे। तो इसलिए ये समाज भरा हुआ है ऐसी मेंटेलिटीज के लोगों से जिसे बोला जाता है हिरण्यकशिपु, जिनकी अनियंत्रित इच्छाएं उनको खींच रही हैं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तब तक जब तक कि कोई व्यक्ति अपने मन पर कंट्रोल ना कर ले अपनी इच्छाओं पर, तब तक इस संसार में कोई न्यूज़पेपर अच्छी खबर नहीं देगा, कोई टेलीविजन चैनल, चाहे वो 24 घंटे का न्यूज हो, अब तो सुना है हमने कि एक चैनल नहीं है, 85 चैनल है, और सब में कहीं ना कहीं दुख और तकलीफों की बात होती है। कारण कि व्यक्ति की अपने मन पर वो नहीं है। बड़े बड़े योद्धा हुए, राजा हुए, जिन्होंने क्या क्या नहीं जीत लिया अपने समाज में, लोगों का विश्वास जीत लिया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं, तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। ऐसे योद्धाओं ने बड़े बड़े राज्य जीत लिए, लेकिन राज्य जीतने के बाद भी एक छोटा सा मन नहीं जीता गया, क्योंकि राज्य जीतने के पीछे भी तो भावना इंद्रिय तृप्ति की थी कि मैं जो हूं एक समाज में, एक देश में, एक प्रॉपर्टी में नहीं रह सकता, मुझे थोड़ी ज्यादा चाहिए। तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वध भी होता है, फिर पॉलिटिक्स भी चाहिए, फिर हर चीज चाहिए। और इस प्रकार व्यक्ति अपने जो 60 या 70 साल उसको मिले हैं जीने के लिए, वो उन अनियंत्रित इच्छाओं को पूरा करने के लिए, योजनाएं बनाने के लिए, और उसी की उधेड़ में उनमें अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है। और जब जाता है सिकंदर की तरह खाली हाथ, तो हाथ में कुछ नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं कि मैं, छोटे छोटे बच्चों से भी बात होती है तो कहते हैं मैं ऐसा कुछ कर जाना चाहता हूं जिससे कि मेरा नाम मेरे जाने के बाद भी क्या हो, रोशन हो, लोग मुझे जाने इस नाम से, मतलब मरने के बाद भी व्यक्ति का अहंकार खत्म नहीं हो रहा। वो व्यक्ति किस योनि में जाएगा, कहां जाएगा, कीड़ा बनेगा, पेड़ बनेगा, पशु बनेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। बट लोग मुझे याद रखे कि मैंने कुछ ऐसा किया, अच्छी बात है। कई बारी बड़े बड़े स्टैचू भी बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसे स्टैचूज की कोई देखरेख नहीं होती, पक्षीगण उसकी देखरेख करते हैं। तो इस प्रकार ये समाज जो है हिरण्यकशिपु की चेतना में अग्रसर है। हिरण्यकशिपु जी क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब इसमें बता रहे हैं कि दैतराज हिरण्यकशिपु अजय, मतलब अजय का मतलब जिसको कोई जीत ना सके, मतलब जीत ना सके ऐसी इच्छा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे युद्ध करना है। युद्ध किस लिए करना है कि वो सब कुछ मुझे चाहिए जो सब चीजों पे मेरा राज हो, इसलिए युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध करूंगा तो मेरे की हार भी हो सकती है, इसलिए मैं चाहता हूं मैं क्या हो जाऊं, अमर हो जाऊं, अजय हो जाऊं। फिर तथा वृद्धावस्था, उसे पता है अगर मैं सब कुछ जीत लूंगा लेकिन जीतते जीतते वृद्धावस्था तो आएगी ना, एक ना एक दिन तो मुझे शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, और वृद्धावस्था में तो मैं उन सब चीजों का भोग नहीं कर पाऊंगा जो मैं इकट्ठा कर रहा हूं। तो उसने कहा कि मुझे वृद्धावस्था भी नहीं चाहिए। और फिर शरीर की जर्जरता, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशना वहितम जातम तुंडम वृद्धो यदि गृहत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। शंकराचार्य जी बताते हैं कि व्यक्ति की दशा क्या हो जाती है वृद्ध होने पर, उसका शरीर का एक एक अंग गलने लगता है। किस प्रकार गलने लगता है, जैसे मोम। युवावस्था में हर व्यक्ति को लगता है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर दिखाऊंगा, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। लेकिन जब वृद्धावस्था आलिंगन करती है तो वो उसको मैं बचा नहीं सकता, जर्जर हो जाता शरीर, दांत उखड़ जाते हैं, बाल उखड़ जाते हैं, हाथ में जो है दंड लट डंडा छड़ी आ जाती है, अब सहारा है उसका, कहीं भी जाए तो वही सहारा है। और कह रहे हैं तद अपि न मुच्यति आशा पिंडम, ऐसी जर्जर अवस्था होने के बाद भी उसकी आशाएं समाप्त नहीं हो रही। काश ऐसा होता, मैं ये कर लेता, अभी ये कर सकता था, वो हो सकता था, अभी तक आशाएं समाप्त नहीं हुई। जितना कुछ उसने इतनी मेहनत कर मेहनत हर तरह से इकट्ठा किया, अब वो उसको लग रहा है मैं इसका भोग तो कर नहीं पाऊंगा। तो ये कर्मों के आधार पर जो कोई संतान आएगी या कोई और लोग आएंगे रिलेटिव, उन सबको जाना, उनको सबको देकर जाना पड़ेगा। और इतने कर्म, उग्र कर्म करने के बाद, सही या गलत करने के बाद, जो उसने अपना कर्मों का बैंक बैलेंस बनाया उसके बेसिस पर अब उसको कोई ना कोई योनि प्राप्त होगी या उसके हिसाब से उसको शरीर प्राप्त होगा। तो कह रहे तद अपि न मुच्यति आशा, यह आशाओं का पिंड समाप्त ही नहीं हो रहा। इसलिए ध्रुव महाराज, शायद प्रहलाद महाराज, कौन बोल रहे हैं, ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि जिस प्रकार बिना मांगे हम लोगों को दुख प्राप्त होते हैं, उसी तरह सुख भी अपने आप ही आ जाएंगे अगर हमारे कर्म मिल गए। हमें तो अपना नियत कर्म करना है, उन कर्मों को करते हुए जो चीज हमारे भाग्य में लिखी है उसको कोई नहीं रोक सकता। वो मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए हम देखते हैं हर व्यक्ति आज जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं आज तक, बड़े बड़े बिजनेसमैन की भी बात कर रहे हैं, उन लोगों ने उनका अगर जीवन देखो कि शुरुआत में वो बड़े फेलियर थे। शुरुआत में कोई कहते हैं कि ये जो मिस्टर अंबानी हैं वो ये करते थे, है ना, ये जो मिस्टर ये हैं, आज जो ये बने हुए वो पहले ये थे, है ना, सड़कों पे ये करते थे, है ना, बड़े बड़े लोग। तो इन्होंने कुछ विशेष बिजनेस मैनेजमेंट नहीं किया अमेरिका जाके या लंदन जाके, इन्होंने क्या किया, इनका जो काम था ये उन्होंने वो किया, अर्थात जहां पर भी उनका भाग्य उन्हें ले गया वो प्रारब्ध अपने आप उनको खींच के ऐसी जगह पर ले गया कि उनको बड़ा बनना पड़ा। भौतिक योग्यता नहीं देखी जाती, जो प्रारब्ध में जो मिलना है, अब किसी को अगर सोने से भरा हुआ, अशर्फियों से भरा हुआ मटका प्राप्त होना है तो उसके लिए पहले उसको बिजनेस मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग थोड़ी करना है। वो तो जिस दिन भी ठोकर लगेगी पता चलेगा ये क्या है, तो पता चला इतना कुछ मिल गया। और फिर ऐसे लोग जो हैं उसका एंजॉय करते जो उसको प्राप्त हुआ है। उसी तरह हिरण्यकश्यप भी जर्जरता शरीर की, वृद्धावस्था शरीर से डर रहा है कि नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए क्योंकि ये सब अगर आएगा तो मैं भोग नहीं कर पाऊंगा। और फिर कह रहे हैं कि अमर भी होना चाहता है, इतना ही नहीं अमरत्व को प्राप्त कर जाऊंगा तो भी ठीक है। अब जैसे हमारे भीष्म पितामह थे, इच्छा मृत्यु थी इनके पास भी, अब इच्छा मृत्यु थी कि मैं जब चाहूं तब मरूं, लेकिन जब बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो करवा सकते थे ना इलाज अपना, भैया निकालो जरा इसको, है ना, हटाओ ये बेड मुझे पसंद नहीं, चुभ रहा है मेरे को हर जगह से, ठीक करो मुझे, पूरा डेंटिंग पेंटिंग करके फिर खड़े हो सकते थे, फिर युद्ध में आ सकते थे। अच्छा, दूसरी बात, अमरत्व प्राप्त था उनको, इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, लेकिन वृद्धावस्था और जर्जरता, उनके बाल काले नहीं रहे, उनका शरीर जर्जर हो रहा था। अब क्या फायदा है ऐसे अमरत्व का या इच्छा मृत्यु का जिसमें व्यक्ति जो है ऐसी स्थिति हो जाए जिसकी कि जो दिखना उठना पूछना पसंद है, आंखें खत्म हो जाए व्यक्ति की, है ना, शरीर पूरी तरह जर्जर हो जाए, हस्तियां खत्म हो जाए और वो अमर है, भाई इस इच्छा में खुश है कि मैं अमर हूं, मैं मरूंगा नहीं जी, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी टांग दो मेरे को ऐसे करके बट मैं अमर रहूंगा ऐसे अमरत्व का फायदा क्या? तो अमर भी होना चाहते हैं और शरीर भी अच्छा चाहते हैं, और इतना ही नहीं और क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे पास सारी सिद्धियां हो, समझ पा रहे हैं, अमरत्व है, इच्छा मृत्यु है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ कर ना पाए व्यक्ति। तो क्या चाहिए उनको, बता रहे हैं यहां पर सिद्धियों के बारे में, अणिमा लघिमा जैसी समस्त सिद्धियां, ये वो लोग हैं जो योगी योग साधना से इन सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। पढ़ रहा था इसमें चैप्टर 5 में 15 में सॉरी इन सिद्धियों के विषय में बताया 11वें स्कंद में। 8 प्रधान योग सिद्धियों में 3 सिद्धियां जिन्हें मनुष्य अपने शरीर को रूपांतरित कर सकता है, जैसे अणिमा, छोटे से छोटा बनना, रूपा जी नीचे परपट में लिख रहे हैं, अणिमा सिद्धि के द्वारा मनुष्य इतना लघु बन सकता है, इतना छोटा बन सकता है कि वह पत्थर में भी, पत्थर के भीतर भी घुस सकता है या किसी अवरोध से होकर निकल सकता है। अब ये जो सिद्धियां हैं, पढ़ा होगा किसी व्यक्ति ने, है ना, मूवीज में दिखाते हैं ऐसे कई बार कि व्यक्ति जो है दीवार है या दरवाजा है उसके बाद भी क्रॉस कर गया, है ना, छोटा से छोटा हो गया। जैसे इंद्र थे, जब उन्होंने गर्भ में घुसना था तो अपने को छोटा सा छोटा कर लिया, चले गए, देवताओं के पास होती है सिद्धि। तो इस प्रकार की सिद्धि, मतलब कुछ भी कर सकते, महिमा सिद्धि से मनुष्य इतना बड़ा हो सकता है कि वह किसी भी वस्तु को ढक सकता है। इसके अलावा लघिमा के द्वारा वह इतना हल्का हो सकता है कि सूर्य की किरणों पर चढ़कर सूर्य लोक जा सकता है। प्राप्ति सिद्धि से मनुष्य कहीं से भी कुछ ला सकता है। हमारे भक्तों को अगर ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाएं तो गाड़ियों की आवश्यकता ही नहीं, हम लोग कलेक्शन पे जाने तो सीधा हाथ जाएगा, हाँ जी माता जी ऐसे आ गए। सीढ़ियों पर चढ़ेगा नहीं कोई व्यक्ति, किरणों से फसलों पे। तो प्राप्ति सिद्धि से मनुष्य कहीं से भी खुश ला सकता है और अपनी अंगुली से चांद को छू सकता है। यहां पर इतने बड़े बड़े रैकेट भेजने की कोशिश हो रही है, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं पता नहीं क्या क्या पहनकर कोशिश करते हैं वहां जाने की, पता नहीं कहीं के कहीं होके आ जाते हैं ऐसी जगह, पता नहीं चांद को छू सकते हैं, कितना सुंदर है। और मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इन सिद्धियों के बारे में, जितना प्रभुपाद जी ने बताया उतना बता देता हूँ। पता चले 5-7 डिवोटीज गायब हो गए, गाय जी कुछ छत पे है, कुछ ड्रम के अंदर है, कुछ सिद्धियां। अच्छा, ये जो सिद्धि है जो हमने बताई आखिरी प्राप्ति सिद्धि, इसमें एक विशेष चीज और बता रहे प्रभुपाद जी कि इस सिद्धि से मनुष्य किसी अन्य जीव की इंद्रियों के भीतर उस इंद्रिय के प्रमुख अधिष्ठाता देवता के द्वारा प्रविष्ट हो सकता है। ये कल ही हमें किसी ने बताया कि अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई है या प्रयास कर रहे हैं कोई साइंटिस्ट, वो कोई इंडियन ही साइंटिस्ट है अमेरिका में कुछ कर रहे हैं, जिससे कि दूसरे के ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ आ रहे? जैसे तो हिप्नोटिज्म होता है, उसमें व्यक्ति दूसरों को कंट्रोल करता है कुछ ना कुछ बनाता है, बता रहा है कि दूसरे के ब्रेन को भी कंट्रोल किया, उसकी इंद्रियों में कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे बच्चा शोर ज्यादा मचा रहा है तो आप चुप करा सकते हैं उसको, या कोई भी कार्य करा सकते हैं उसकी पर्टिकुलर किसी कह रहे किसी। हाँ, तो बता रहे कि देवता उस पर्टिकुलर देवता के थ्रू ये काम होता है जो इंद्रिय के, बट ऐसा भी पॉसिबल है जिसके बाद सिद्धि हो जाती है। और उसकी इंद्रियों का उपयोग करके किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है, ऐसा कंट्रोल। प्राकाम्य द्वारा किसी भी भोग्य वस्तु का अनुभव इस जगत या अगले जगत में कर सकता है, भोग्य वस्तु कोई भी तरह की वो भी प्राप्त की जा सकती है। इशिता के द्वारा मनुष्य माया की उपशक्तियों को साध सकता है। जो माया देवी है उसकी जो सबऑर्डिनेट शक्तियां हैं इस संसार को चलाने के लिए, तो माया की उन शक्तियों को भी क्या कर सकता है, अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। कितनी विशेष ये जो है शक्ति है इशिता। लेकिन रूपा जी एक चीज और बता रहे कि दूसरे शब्दों में योग शक्तियां प्राप्त कर लेने पर भी मनुष्य माया के वश से निकल नहीं सकता। अगर उसने माया की कुछ शक्तियों को कंट्रोल कर भी लिया है तो भी कह रहे कि लेकिन माया के चुंबन से बाहर नहीं निकल सकता, किंतु वह माया के उपशक्तियों को साध सकता है। वशिता द्वारा मनुष्य अन्य को अपने अधीन बना सकता है या अपने को तीन गुणों के नियंत्रण से बाहर रख सकता है। प्रकृति के जो तीन गुण काम कराते हैं हमसे, उससे अपने को बाहर रख सकता है। अंततः काम वसायता के द्वारा मनुष्य नियंत्रण प्राप्ति तथा भोग की अधिक से अधिक शक्तियां प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु ये सिद्धियां क्यों चाहते हैं, ताकि इन सब सिद्धियों से मैं भोग कर सकूं। और अमृत इसलिए चाहते हैं ताकि मैं जब तक चाहूं तब तक कर सकूं, और शरीर और वृद्धावस्था इसलिए चाहते कि मुझ पर ना आए ताकि मैं हमेशा यंग दिखूं। अब मुझे बताइए ये जो इच्छाएं हिरण्यकशिपु जी कर रहे हैं आजकल के व्यक्ति के नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे को मृत्यु ना आए, इच्छा भी हुई है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बीमार ना हूं, मेरा शरीर हमेशा ठीक रहे, है कि नहीं। और हर व्यक्ति चाहता है कि हाँ मुझे इस जीवन की सारी चीजें मिल जाएं, ये भी मेरे कंट्रोल में काम करे, ये भी मेरे कंट्रोल में काम करे, जो मैं चाहता हूं वैसा हो। तो इसलिए हिरण्यकशिपु से भरा हुआ है संसार। हमारे हृदय में भी कहीं ना कहीं हिरण्यकशिपु जैसी आसुरी वृत्ति है। इसलिए 16वें अध्याय को जब हम पढ़े भगवद गीता के, तो हम जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है तीसरे चौथे श्लोक के बाद से कि व्यक्ति की चेतना कैसी होती है, उसकी इच्छाएं कैसी होती हैं एक आसुरी व्यक्ति की, कि आज मेरे पास इतना है, कल इतना हो जाएगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं राज करूंगा, फिर मैं सब गुरी तो है आसुरी। तो इसमें हिरण्यकश्यपु जी जो है हमारे अमर होना चाह रहे हैं, और क्या इच्छा इनकी कि पृथ्वी पर ही नहीं, अतल वितल सुतल तलातल असातल सारे लोग, और गोर लोग स्वर लोग महर लोग जन लोग तप लोग और कौन सा लोग, सत्य लोगों को भी चाहते हैं कि मैं इसको भी काबू कर लूं बाद में। सत्य लोग में कौन रहते हैं, ब्रह्मा जी। तपस्या किससे किसको खुश करने के लिए करेंगे, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहे हैं, ब्रह्मा जी से इच्छा है उनकी सब कुछ को पाने की, और बाद में ब्रह्मा जी का ही कहेंगे जी चलो आप जाओ खत्म हो गए। इतना शक्तिशाली हो जाएगा ये हिरण्यकश्यप। और ऐसे में जब इस प्रकार जब असुर लोग शक्तिशाली हो जाते हैं तो ये भी खैर इतना शक्तिशाली होना भी भगवान की इच्छा है, भगवान की ही योजना है। अगर कोई शक्तिशाली इतना होगा तभी तो भगवान अवतरित होंगे उसको मारने के लिए, और फिर भगवान नरसिंह देव के रूप में इस हिरण्यकश्यप को वध करने आएंगे। हमारी इच्छाएं हिरण्यकश्यप जैसी तो हैं, लेकिन इतनी विशाल और इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, थोड़ी थोड़ी है। हम छोटे मोटे प्लाट कब्जे करते हैं है ना, हम लोग तपस्या करने की तो इच्छा है नहीं तो हम पार्लर चले जाते हैं जवान कर दो, जिम चले जाते हैं, मृत्यु से बचने के लिए हम सारे के सारे काम करते हैं। तो भगवान हम जैसे को मारने थोड़ी आएंगे, अरे छोटा हिरण्यकश्यप इसको कैसे मारूं। तो हम जैसे लोगों को भगवान का जो काल चक्र का ये काल है यही धीरे धीरे खत्म करता रहता है कालोवसी। तो हिरण्यकश्यप को अगर कहीं भक्तों का संग प्राप्त हुआ होता तो भक्त बताते भैया जो अणिमा लघिमा इशिता इत्यादि चीज मांग रहे हो या जो चाहते हो आप कि मैं बूढ़ा ना हूं मैं मरू ना, तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ लो। उसमें आपने अभी क्या करा, ये सब सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक उसने तपस्या करी अंगूठों पे खड़ा होकर। अगर हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर वहां पहुंच जाता तो कहते सर एक पढ़ लो बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। हिरण्यकश्यप कहता यार इतने समय तक मैं क्यों करूं, क्या फायदा मुझे इतने समय तक ये करने का, है ना। केशव बलराम से किताब लेते कहते आज इसी को पढ़ते बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, यही तो चाहता हूं मैं कि मैं वृद्ध ना हो, मैं मरू ना, मेरा शरीर जर्जर ना हो, बिल्कुल सही यही तो चाहे, तो हम यही दे रहे हैं आपको ये लीजिए। अच्छा इससे ये सब मिलेगा, हाँ जी मिलेगा। कितना का प्लान किया आपने, कब तक करोगे सर, मैं हजारों साल तक करूंगा तपस्या 15 मिनट में किताब खत्म होती है पढ़ो ना इसको। तो उन हिरण्यकश्यप में और हम हिरण्यकश्यप में अंतर है, उन्होंने बात माननी नहीं, उन्होंने करनी हजारों साल तक तपस्या, हम लोगों के पास कहीं ना कहीं से रूपा जी के ग्रंथ प्राप्त हैं या मिल जाएंगे, है कि नहीं, हम लोग बच सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग हिरण्यकश्यप से जैसे जो हमारी चेतना है भक्तों के संग में रहकर कथा का श्रवण कर पुस्तकों का अध्ययन कर और हरिनाम की शरण ग्रहण कर अमरत्व प्राप्त कर लें। अगर अमरत्व प्राप्त हो गया ये तो बहुत छोटी सी चीज है इन सब चीजों का फल, नहीं नहीं, वृद्धावस्था शरीर की जर्जरता बीमारियां बुढ़ापा है ना, रूपा जी कहते थे इन सब से बाहर निकल जाएंगे। तो अगर हमने इन सब को स्वीकार कर लिया अर्थात आध्यात्मिक चीजों को, तो निश्चित रूप से हम लोग आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाएंगे जहां पर किसी प्रकार का कलह कलेश नहीं, जहां पर किसी भी प्रकार की मृत्यु नहीं, शरीर की जर्जरता या वृद्धावस्था नहीं, केवल आनंद है। तो भक्तों को चाहिए कि वो अपनी इन इच्छाओं को जो इस संसार की भोग की इच्छा है उस इच्छा उन इच्छाओं को बदले कृष्ण को उनकी सेवा करने में, या फिर इस प्रकार की सिद्धियां जो बताई गई हैं बताते हैं, जो व्यक्ति भक्ति करता है जो सेल्फ रियलाइज्ड है भगवान के चरणों में लगा हुआ है उसके अंदर ये सारी सिद्धियां होती हैं। बट डिवोटीज कहते हैं जो प्योर डिवोटीज वो एग्जिबिट नहीं करते इन सब चीजें कुछ करने के लिए। प्रभुपाद जी जैसे व्यक्ति 70 साल की उम्र में पूरे विश्व को क्या कर लिया, अपने वशीभूत कर लिया अपने प्योरिटी से, है ना। तो भक्तों को चाहिए कि वो इन सब आसुरी प्रीतियों को, है ना, या भोग की जो इच्छा है या अनियंत्रित जो इच्छा है हमारे हृदय में, उन सब का त्याग करे और एक अच्छा भक्त बनने का प्रयास करे, दास बनने का प्रयास करे, जिससे कि हम लोग उस आध्यात्मिक जगत में एंटर हो सकते हैं। ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की, निताय गौर।